नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनियों के चीट यानी धोखे से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, खासकर राजधानी रायपुर से सटे गांव में। हमारे दो साथियों जुल्फिकार और नीलेश ने नवा रायपुर के कई गांव में तफ्तीश की तो पता चला कि 29 गांव के किसानों ने राजधानी के विकास के लिए अपनी जमीन अधिग्रहण में सरकार को दी थी। सरकार से मुआवजा मिला, लेकिन इस पैसे पर चिटफंड कंपनी की नजर लग गई। कंपनी ने गांव के ही व्यक्ति को एजेंट बनाकर पैसे डबल करने का झांसा दिया और लोगों ने पैसे को चिटफंड कंपनी में निवेश कर दिया। लोगों का पैसा भी डूब गया, जिसके चलते कई परिवार बर्बाद हो गए। जिनको पैसा भी मिला वो भी बहुत कम लोग थे जो उनको मुआवजा मिला। लड़कियों की शादी टूट गई, गांव के किसान युवा मजदूर बन गए। 10 लोगों की पैसे डूबने से सदमे में मौत भी हो चुकी है। 3 एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं। देखिए एनडीटीवी की खास ग्राउंड रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद नया रायपुर को बसाने के लिए दर्जनों गांव की जमीन को अधिग्रहित किया गया। किसानों को करोड़ों रुपया मुआवजा मिला और उसी समय छत्तीसगढ़ में कई सारी चिटफंड कंपनियां आईं, जिनमें लोगों ने दुगने के लालच में अपने पैसों का इन्वेस्ट किया और ये पैसा 2014 में कंपनियों के बंद हो जाने के बाद डूब गया। इसको लेकर कई सियासतें हुई।
देश दुनिया में क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को परसदा का पता मालूम है, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन इस गांव में सूखे मुरझाए दुखी चेहरों की एक और हकीकत है। गांव के लगभग हर परिवार को चिटफंड कंपनियों ने चीट किया है यानी धोखा दिया है। गांव में बरगद के पेड़ के नीचे प्रभुराज कन्नौज और दुलेश्वर निषाद बैठे मिले। एनडीटीवी ने जैसे ही चिटफंड की बात छेड़ी, दोनों का दुख और गुस्सा फट पड़ा। दुलेश्वर कहते हैं 2 एकड़ जमीन बेचकर चिटफंड में पैसा लगाया, डूब गया, आज मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं।
हमने क्या है, एक एक रुपया सके जुड़ा जुड़ा के जमा किए थे, वो जो है आज तक बस फॉर्म भराते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। परेशानी ही परेशानी है भी, आप क्या करोगे, गरीब आदमी है ना, और उसी को थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो कुछ बनाएंगे, ये सोचे थे, वो सब गया चिट फंड का पैसा हमारा। हमारा जो है ना मकान है ना घर है, कुछ नहीं, किराए में रहते हैं हम, और उसी लिए हम इकट्ठा कर रहे थे कुछ बना लेंगे हमारा दो झोपड़ी करके।
हम 2 एकड़ जमीन बेचे रहे हैं चिट फंड में, मतलब 1 के डबल मिली ही ऐसा करके मतलब बोले रही से, और ओमे हमला मतलब अभी तक फॉर्म भरा भरा के मतलब बोला पैसा ला हमला वापसी भी नहीं करत है, और कई बार फॉर्म भरा रहा है। बस परेशानी यही है कि आज कुआं खोदो आज पानी निकालो आज पियो, ऐसा टाइप का हो गए हैं। आज कमा रहे हैं तो आज खा रहे हैं, ऐसा टाइप का जिंदगी है। अब क्या है, रोजी मजूरी कर रहे हैं, रोजी मजूरी मिल रहा है, उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
चिटफंड के झांसे में फंसे देवचंद यादव कहते हैं गांव के 90% लोगों का पैसा डूब गया है।
गांव में 90% लोग पैसा जमा किए हैं चिटफंड कंपनी में, आते हैं लोग उसका ले जाते हैं बायोडाटा, देंगे पैसा, बोलता है आज तक 1 रुपया नहीं मिला इन लोग को, कम से कम उसका लागत जो पैसा जो लगा है 4 लाख जैसे रेट से बेचा है या चिटफंड में जमा किया है उसका पैसा ब्याज तो न दे, लेकिन उसका जो लगा है पैसा वो वापस दिया जाए।
चिटफंड कंपनी में पैसा डुबा चुके गोपाल यादव के परिवार में झगड़ा होने लगा, परिवार बिखर गया, आज मजदूरी करने को मजबूर हैं।
मात्र 40 डिसमिल खेत था, पूरा जमीन बेचने के बाद हमको 3 लाख रुपए का बेचा थे, पूरा पैसा चिट फंड में जमा हो गया, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है, चिट फंड वाले गपत कर दिए। घर में मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि पैसा क्यों चिट फंड में जमा किया है, तो मजदूरी कर रहे हैं।
गांव में जैसे जैसे हमने लोगों से बातचीत की, अलग अलग दर्दनाक कहानियां सामने आने लगी। बुजुर्ग सुमित्रा चंद्राकर की तो हमसे बात करते हुए आंखें भर आईं।
घर में तक दिक्कत कैसे नहीं हुई है, बाल बच्चों का महफूस भी, खेत खा रहती था, खेत थोड़ा बहुत बोत रहे, खेत भी तो पूरा कब्जा कर ले, बस हम तो चिट फंड में डालत रहे, आया के सब जे जे डबल देव उती बोल देव, खेत लालच में डाल पड़े साहब, का करबे गरीबी स्थिति में, का करबे देखा तो घर वाले का स्थिति देना।
योगेश्वर धीवर, उमाशंकर और लीला राम के परिजनों ने 20 से 40 लाख रुपए चिटफंड में लगा दिए। अब सिवाय पछतावे के घर में कुछ नहीं बचा।
वो पैसा जमा करने के बाद परिवार में सब आपसी मतभेद हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गया, घर में डिवाइडेशन हो गया, सारी परिस्थिति जो है विपरीत हो गई, जिसके चलते कि आत्मदाह कर लिया जाए इस टाइप से। पर क्या करेंगे, बच्चे वाले हैं, अपने आप को कंट्रोल किए संभाल कर चले, बच्चों को संभालना है करके।
हम लोग बेचना नहीं चाहते थे, फिर भी खाते में पैसा जबरदस्ती दे दिए, पैसे को चीट फंड में लगा दिए। अपना ही जमीन हम लोग, मतलब हमारा ही जमीन सरकार अधिग्रहण करके हम ही से उसी में मजदूरी करवा रही है।
परिवार के घर का 40 लाख रुपए लगा, मेरे बाबूजी का 25 लाख और मेरा और दो भाई के टोटल मिला के 40 लाख रुपए लगा चिट फंड में। सब डबल के चक्कर में सब चिट फंड में डाले पैसा। अब ऐसे स्थिति है भैया, कंडीशन बहुत बुरी है। अब आज बाबूजी ये उम्र में कभी खेती बाड़ी कम कर रहा है, बताओ। मेरा रोजगार बस खेती बाड़ी इतनी है, चल रहा है बोरवेल से वगैरह, कहीं कुछ काम करके चल रहा है। गाँव की स्थिति एकदम बहुत बिगड़ा हुआ है।
नवा रायपुर के 5000 आबादी वाले परसदा गाँव में तो हर परिवार के साथ धोखाधड़ी हुई है।
कई आदमी 200 आदमी ज्यादा मर गए भाई। मेरे व्यक्तिगत खुद 10 लाख है, उसने 2 लाख 4 लाख हर गरीब आदमी के अपन खेत खार के जिसे भी दे के बेचे। यहाँ कम से कम 5 लाख पूरा छत्तीसगढ़ में रह रहा से 20 करोड़ से ज्यादा है।
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चिटफंड घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया, लोगों के पैसे वापस करने का वायदा किया। सरकार कांग्रेस की बन गई, लेकिन प्रदेश में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों के 100 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों में करीब 2000 करोड़ रुपए डूब गए, जिसमें भूपेश सरकार के समय 33 करोड़ 40 लाख रुपए ही लोगों को वापस मिले। पैसे वापसी की मांग को लेकर कोशिशें अब भी जारी हैं।
मीठी मीठी बातें और लुभावने वादे और पैसा दुगना करने का लालच देकर गाँव के लोगों से बड़ी रकम चीट फंड में लगवा दी गई।
कांग्रेस की अजीत जोगी सरकार ने 2003 में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की योजना तैयार की थी। सरकार बदलने के बाद बीजेपी ने नया रायपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया। बीजेपी ने अजीत जोगी सरकार के प्रस्तावित 7472 हेक्टेयर जमीन के बजाय 23742 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया। हर किसान को औसतन 1 हेक्टेयर के लिए 5 लाख रुपए मिले। नवा रायपुर के किसानों को 1187 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के रूप में मिली। ग्रामीणों ने इसी रकम से 2008 से 2014 तक चिटफंड कंपनियों में रुपए लगाए, जो बाद में डूब गए।
2002 में जब नया रायपुर आई और नया रायपुर आए के बाद में सरकार एक अफवाह फैलाई इसकी जमीन ला आपसी समझौता में बेच दो, और किसान डर में सरकार लूट ली करके जमीन तो बेच दी, लेकिन उही समय नया नया कंपनी खुली और नया कंपनी में फीता काटने वाला राज्य के मंत्री मन रहे, राज्य में मंत्री है और पत्नी मन रहे, स्वयं मुख्यमंत्री के पत्नी वीना सिंह भी फीता काटे हैं। किसान जो है ये सोचिस कि हमारा पैसा सुरक्षित चले गए और हमला समय समय में पैसा मिल जी, लेकिन पैसा आज नहीं मिले से स्थिति बद से बदतर चले जाते। अभी तो जैसे भी करके काम चला थे, 2031 के बाद में सबला समझ में आ जाही कि हम आने वाला बच्चा के शादी कैसे करबो। अभी जो शादी करना है तन हड़बड़ आ गए और परिवार कैसे चलही, ये बहुत बड़े विराट समस्या आ गई है।
पूर्व की भूपेश सरकार ने वहां की जनता से वादा किया था कि उनके पैसे उनको मिलेंगे, कुछ ही लोगों को उसका लाभ मिला, बाकी लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार है, निश्चित तौर पे बहुत पुरानी मांग है और इस पे विचार किया जाएगा और इस पे कमेटी बनाकर इस पे जल्द निर्णय लेंगे।
नवा रायपुर के आसपास ही लोगों से 200 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। कुछ एजेंटों ने भी खुदकुशी कर ली है।
नया रायपुर के 21 गांवों के हजारों लोगों के करोड़ों रुपए चीट फंड कंपनियों में फंसे हुए हैं। साल दर साल अब उम्मीदें टूटती जा रही हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो नेता इनसे वादा करते हैं हमारी सरकार बनवा दो, पैसे वापस दिलवा देंगे, लेकिन इसी उम्मीद पर स्थिति अब गांव के लोगों की बद से बदतर होती जा रही है और लोगों को उम्मीद है कि पैसा एक दिन जरूर मिलेगा, लेकिन वो पैसा कब मिलेगा, उसका इंतजार कब खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से अपने सहयोगी जुल्फिकार अली और कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।
तो देश की राजधानी दिल्ली में तपते तापमान के बीच बिजली पानी की समस्या से कुछ इलाकों में इनकी कमी देखी जा रही है। पानी के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन अड़चने बनी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहा जा रहा है कि टैंकर माफिया काम कर रहा है, कार्रवाई नहीं की तो मामला दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। इस पर दिल्ली सरकार ने खुशी जताई और कहा है कि पुलिस कार्रवाई करती है तो सहयोग मिलेगा। इस बीच जल संकट और टैंकर माफिया को लेकर जल मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। आतिशी का आरोप है कि उनके निर्देशों के बाद भी मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स की संख्या घटाई। टैंकर्स की संख्या घटने से गैरकानूनी टैंकर्स का व्यापार बढ़ा है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमें और जानकारी दे रहे हैं।
दिल्ली में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है कि सूर्य उदय होने से सूर्यास्त होने तक अगर आप खुले आसमान में कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि कहीं आपकी स्किन तो नहीं जल रही है। बेतहाशा गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत भी लगातार चल ही रही है। यमुना में पानी पहले ही कम है। हिमाचल प्रदेश को भी जो आदेश दिया गया था कि वो पानी दिल्ली के लिए छोड़े, वो भी हिमाचल प्रदेश की तरफ से नहीं छोड़ा गया है। यमुना में वजीराबाद बैराज तक वो पानी नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ मुनक नहर से जो पानी हरियाणा के जरिए मुनक नहर से जो पानी दिल्ली आना होता है उसमें भी कमी दिखाई दे रही है और इसकी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत लगातार बनी ही हुई है। गर्मी और पानी की किल्लत झेल रहे दिल्ली वालों के लिए मुसीबत मंगलवार को तब और बढ़ गई जब दिल्ली में पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में अचानक दोपहर को 2 से 2.5 घंटे के लिए बिजली चली गई। दिल्ली के लिए ये कोई सामान्य बात नहीं थी। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मंडोला में जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का 400 केवी का सबस्टेशन है उसमें आग लग गई है। वहां से 1200 मेगावाट दिल्ली को बिजली सप्लाई होती है, तो वहां पर आग लगने की वजह से दिल्ली में बड़े एक आ जाए एक 2 से 2.5 घंटे का एक पावर कट लगा। आमतौर पर दिल्ली में ये सब नहीं होता है, इसलिए जो है ये एक चिंता का सबब बना। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2-2.5 घंटे के बाद ही बिजली आ गई और फिलहाल सब हालात कम से कम बिजली के मोर्चे पर तो अब सामान्य हैं। लेकिन पानी की किल्लत दिल्ली के अंदर अभी बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मसले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो ये जानना चाहेगा कि हिमाचल को जब आदेश दिया गया था कि 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए वो छोड़े तो उसकी क्या स्थिति है, क्या पानी छोड़ दिया गया है। वैसे छोड़ा नहीं गया अभी तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानना चाहेगा कि उसकी स्थिति क्या है। अगर नहीं छोड़ा गया है तो क्यों नहीं छोड़ा गया है। और दूसरा, दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी के लिए पानी बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, टैंकर माफिया पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। साथ ही एक मुद्दा ये भी है कि हरियाणा से जो मुनक नहर के जरिए पानी दिल्ली आता है जिससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं वहां से भी पानी कम आ रहा है, तो उसको लेकर क्या स्थिति है। तो इन सब पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
तो बात करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था की। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया है कि भारत अगले 3 साल में 6.7% की विकास दर से आगे बढ़ेगा। मजबूत घरेलू मांग, निवेश में उछाल और सर्विस सेक्टर में अच्छे कामकाज से भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने जो ये आंकड़े दिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं गुरचरण दास, अर्थशास्त्री हैं। सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया है कि भारत अगले 3 साल में 6.7% की विकास दर से आगे बढ़ेगा, आपका क्या असेसमेंट है?
जो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है अगले 3 साल के लिए वो बिलीवेबल है, मतलब हो सकता है, क्योंकि जो पिछले 30 साल में अब 1951 के बाद जब रिफॉर्म्स हुए उसके बाद हमारी इकोनॉमी की रफ्तार एवरेज ले लो ना, हर साल मतलब अप एंड डाउन होता है, लेकिन अगर एवरेज ले लो तो वो 6% रही है और इस वक्त इसके ऊपर चल रही है, तो ये ग्रोथ रेट हो सकता है। लेकिन एक कठिनाई है, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इस रेट में नौकरियां, रोजगारी ज्यादा होनी चाहिए थी, वो हमसे नहीं हुई। एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए थे, वो हमसे नहीं हुए। सारे देश, कोई भी देश नहीं है जो एक्सेप्शन है, सारे देश जो बड़े हैं, जो गरीब से अमीर बने हैं इन द लास्ट 100 साल में, उन्होंने एक मंत्र फॉलो किया है, वो है, वो मंत्र है एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मतलब जहां लेबर ज्यादा लगती है और जो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री, मतलब जो फैक्ट्रियों के लोग, टेक्नोलॉजी भी हो सकते हैं, जैसे खिलौने, जैसे कपड़े, जैसे जूते, ऐसी चीजों, ऐसी जो सब चीजें हैं, ये चीज सबने ये किया है। अब आखिरी देश यह है चाइना, शुरू जापान ने किया, फिर कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, सबने जो वाकई मिडिल क्लास देश हो गए हैं। और हमारी आधी वर्कफोर्स, मतलब जो लेबर है, वो एग्रीकल्चर में है, वो किसान है। अब किसान लोग सॉफ्टवेयर जॉब्स तो नहीं जाएंगे एकदम, तो ये हमने एक किस्म की स्किप कर दिया है? ये हम तो इसलिए ये हमारी कमी है। तो गवर्नमेंट को वन पॉइंटेडली, एकाग्रता के साथ ये प्रॉब्लम हल करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट की गलती है या पिछली गवर्नमेंट गलती है, ये शुरू से 30 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है और गवर्नमेंट को ये भी पता है और ये गवर्नमेंट को सवाल भी, जवाब भी जानते हैं। कहते हैं बहुत बार कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो हमारी मार्केट को छोटी है, और क्यों छोटी है, क्योंकि आहिस्ता मार्केट बढ़ती है, आबादी है हमारे देश में लेकिन मार्केट अभी छोटी। तो एक्सपोर्ट जरूरी है और एक्सपोर्ट बड़ी कंपनियों को करना पड़ेगा। ये छोटी जो कर रही है ना, हमारी कंपनी छोटी छोटी होती हैं, बाकी जो हैं चीन की या वियतनाम की या इंडोनेशिया, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनकी कंपनियां बहुत बड़ी हैं। तो अब लेबर लॉज बदलने पड़ेंगे, आसान करना पड़ेगा जमीन खरीदना, ये सब रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये रिफॉर्म्स जो पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की करने की, पर अब जरूर करने पड़ेंगे। और इस, ये एक और फायदा है कि इस गवर्नमेंट में चंद्रबाबू नायडू पार्टनर है कोलिशन में, और वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान में जो इंस्टिंक्टिव रिफॉर्मर है, भाई कुदरती रिफॉर्मर, जो इन्होंने हैदराबाद में किया, कमाल कर दिया अकेले। तो इसलिए उसकी मदद लेनी चाहिए, मॉरल सपोर्ट लेनी चाहिए और ये सवाल हल करना है।
जी सर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कृषि उत्पादन में सुधार और मुद्रास्फीति में गिरावट से जो निजी खपत वृद्धि को लाभ मिल सकता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ सकती है। अब लेकिन सर, कृषि पर एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग का साया भी मंडरा रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस अनुमान को?
नहीं, हमारा, हमारी कृषि रिलेटिवली अच्छी हालत में है। ये जो प्राइस राइज थी ना इस साल की, कंज्यूमर प्राइस राइज, वो उसका कारण था पिछले साल पिछला साल अच्छा नहीं था, मानसून अच्छी नहीं थी, बारिशें कम थी, इस साल अच्छी प्रेडिक्ट किया है मैथ में, अच्छी बारिश होगी। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक सच्ची ये है कि हम किसान को पनिश करते हैं, क्योंकि हर हर बार हम बंद कर देते हैं एक्सपोर्ट, तो ये नहीं करना चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट कस्टमर्स को यू कांट लेट देम डाउन। वो जो कृषि के जो लॉज थे, थ्री फार्म लॉज, वो बहुत बढ़िया थे, और वो पर ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, इनको बेचना पड़ता है। मोदी जी की कमी थी कि उन्होंने बेचा नहीं, पर्सवेड करना पड़ता है। मार्गरेट थैचर बड़ी जबरदस्त रिफॉर्मर थी विलायत की, वो कहती थी कि मैं 20% टाइम बिताती हूँ काम रिफॉर्म करने में, काम करने में 80% टाइम बिताती हूँ बेचने में, लोगों को, अपनी पार्टी को, अपोजिशन को। तो ये हमें सबर सीखना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पेचीदा मसले हैं अर्थव्यवस्था के, आपने उनको इतने आसानी से समझाया। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ...2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकी जो उसे 2014 और 2019 में मिली थी। खुद वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री की जीत का अंतर पिछली बार से घट गया, लेकिन क्या इससे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई बड़ी गिरावट आई? इप्सोस इंडिया बस नाम की संस्था शहरी इलाकों में लगातार सर्वे करती रही है, जिसके ताजा नतीजे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोटे तौर पर पहले की तरह लोकप्रिय बने हुए हैं। बेशक मामूली गिरावट इसमें आई है। सर्वे के मुताबिक फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ 75% छू गया था, जो मई 2024 में 5% घटकर 70% तक आ चुका है, लेकिन दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बस 60% की थी, जो फरवरी 2023 में 67% पर आ गई और सितंबर 2023 में 65% तक रह गई। यानी मई में प्रधानमंत्री फिर भी खासे लोकप्रिय गए। इप्सोस ने यह भी समझने की कोशिश की है कि देश के किन हिस्सों और वर्गों में प्रधानमंत्री को कितनी लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री के रूप में उनके काम को वो कैसे आंकते हैं। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि उत्तरी क्षेत्र के 86% लोगों ने प्रधानमंत्री के प्रदर्शन को डिस्टिंक्शन दिया, जबकि पूर्वी क्षेत्र में 83% लोग उनके साथ दिख रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र के 75% लोगों ने उनके काम पर मुहर लगाई, जबकि टियर 1 शहरों में 85% लोगों ने उनके काम को सराहा। टियर 2 में ये प्रतिशत 60% रह गया, जबकि टियर 3 शहरों में ये 76% चला जाता है। सर्वे में ये भी समझने की कोशिश की गई है कि अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन को लोगों ने किस तरह देखा। इसके मुताबिक शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य में सबसे अच्छा काम माना जा रहा है। प्रदूषण, पर्यावरण, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार को बीच की रैंक मिली है, जबकि बेरोजगारी के मामले में सरकार का काम सबसे कम मान्यता हासिल कर रहा है। तो ये सर्वे बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में जो गिरावट है वो मामूली है। चंद्रबाबू नायडू ने आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण और चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश भी मंत्री बने। पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शपथ समारोह में मशहूर अभिनेता चिरंजीवी, रजनीकांत समेत कई दिग्गज भी पहुंचे। उधर उड़ीसा में मोहन चरण मांझी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। और उड़ीसा की सबसे कम उम्र की विधायक उपासना महापात्र ब्रह्मगिरी से चुनी गई हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने।
हमारे साथ उपासना महापात्र है, जो इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पे हमारे साथ है। उपासना, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपने जीता है उड़ीसा विधानसभा में सबसे नौजवान एमएलए आप हैं, तो ये जरूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट होंगे।
बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट जरूर है, पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी अभी हम पर है। मेरी उम्र आज की तारीख में 26 साल है और 26 साल की एक लड़की पे, 26 साल की एक महिला पे ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली के सारे वोटरों ने, जनसाधारण ने इतने भारी मात्रा में आशीर्वाद किया है, उसके लिए सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत मेहनत करी है सबने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और मोदी परिवार के सारे सदस्यों ने, सबने बहुत मेहनत करी और उस सारी मेहनत के बाद अभी इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं हम।
आप एक एस्पिरेशनल उड़िया को रिप्रेजेंट करते हैं, जेन जी जैसे आपने कहा, और आप जैसे नौजवान लोग पॉलिटिक्स में आजकल नहीं आना चाहते, लेकिन उड़ीसा में इस बार हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखा है, आप भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, सोफिया फिरदौस, यंग महिलाएं, जेन जी महिलाएं पॉलिटिक्स में आना, ये बड़ी बात है।
माय लेट फादर वंस सेड, राजनीति कीचड़ है। 10 साल पहले उन्होंने ये चीज बोली थी, मुझे तब समझ में नहीं आई थी, तब मैं 16 साल की छोटी बच्ची थी, स्कूल जाती थी। आज 10 साल बाद जब उसी कीचड़ से कमल खिला है, सब समझ आ रहा है। जेन जी के हिसाब से मुझे ये एहसास है कि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां इसीलिए है क्योंकि मुझे अपने पियर्स, अपने साथियों के लिए भी कुछ करना है, भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ करना है, और अगर हम अभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आखिर कौन लेगा।
और एक महिला उप मुख्यमंत्री का इस बार ओथ लेना, ये भी बड़ी बात है।
बहुत गर्व अनुभव हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ सुना था, हमारे पैदा होने से पहले स्वर्गीय श्रीमती नंदिनी सतपथी जी मुख्यमंत्री थी और वो इकलौती मुख्यमंत्री है जो फीमेल है उड़ीसा के हिस्ट्री में। आज हम एक नया इतिहास रचते हुए देख रहे हैं, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए।
पुरी का सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत अहम बात है, पुरी प्रेस्टिजियस सीट है, आपकी जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी पुरी के अंदर आता है, और मैं आपसे पहले जब बात किया है तो आपने कहा था कि आप तब आप मुंबई में अपने पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, आप कहा कि नहीं मैं उड़ीसा वापस जाके वहां पे अपने लोगों के साथ काम करना चाहूंगी। आज जब आप जीत के आए हो और साथ साथ पूरी के सीट भी बीजेपी ने जीता है, ये जरूर एक बहुत ही अच्छा फीलिंग होगी।
बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बहुत ही भावनात्मक महसूस हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ और माटी की पुकार सुनकर कोई दूर नहीं रह सकता, मुंबई जाए, दिल्ली जाए, देश छोड़कर चले जाए, घूम फिर कर वापस अपने घर ही आना है। और शायद ये मेरी तकदीर में लिखा था कि जहाँ मेरे स्वर्गत पिताजी का जन्म हुआ था उसी ब्रह्मगिरी मिट्टी में उधर के लोगों की सेवा करनी है और अपना जीवन उसी में समर्पित करना है।
से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उधर लोक सिक्किम में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग, जो चामलिंग संकार में भी मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने चामलिंग के 25 सालों के शासन को समाप्त किया। उनका कहना है कि 2014 के बाद से उत्तर पूर्व की केंद्र से दूरी घटी है।
2014 के बाद जो पहला नॉर्थ ईस्ट का जो सोच था वो बदल चुका है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो था वो हुआ करता, ऐसे नहीं हो रहा, छोटा मोटा हो रहा है अभी। पहला जब हम लोग, मैं पहला चामलिंग साहब के साथ भी मैं 15 साल काम किया हूँ एज ए मिनिस्टर, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जब कांग्रेस गवर्नमेंट था वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लीडर से मिलने के लिए 15 दिन एक महीना तक मतलब वेट करना पड़ता है, अभी तो हम लोग फटक से मिलता है, जाए मिल जाए। तो ऐसा एक मतलब मोदी सरकार का, मोदी साहब का एक सोच है कि पूरा हर नॉर्थ ईस्ट को, पूरा एक नॉर्थ ईस्ट भी एक हमारा अभिन्न हिस्सा है, ऐसा सोच के काम के कारण अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुका है नॉर्थ ईस्ट।
तो सिक्किम की क्या उम्मीदें हैं अपनी जनजातियों के लिए, अपने राज्य के लिए? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत के लक्ष्य में सिक्किम का बड़ा योगदान है। देखिए सिक्किम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ नगमा सहर की पूरी बातचीत रात 10:30 बजे। और बात राजस्थान से, जयपुर से खबर है। जयपुर में एक विदेशी महिला को 6 करोड़ रुपए में बेची गई नकली ज्वेलरी के मामले में पिता पुत्र के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। इस मामले में फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाले नंद किशोर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ज्वेलर्स गौरव सोनी और राजेंद्र सोनी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। नकली जेवर करोड़ों में बेचने वाले इतने मालामाल हो गए कि उन्होंने 4 करोड़ का एक फ्लैट जयपुर में खरीदा। अमेरिकी नागरिक चेरिश ने 18 मई को जयपुर के मानक चौक थाने में यह मामला दर्ज करवाया। इस महिला ने गौरव सोनी से 2 साल में 6 करोड़ से ज्यादा के जेवर खरीदे। अप्रैल में अमेरिका में लगी एक प्रदर्शनी में जांच कराने पर जेवर नकली पाए गए। उसने जयपुर आकर गौरव से बात की तो उसने जेवर बदलने से मना कर दिया और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भाग गया। बाद में गौरव ने महिला की झूठी शिकायत भी कर दी। इससे परेशान होकर महिला ने एम्बेसी में शिकायत की। इसके बाद ही FIR दर्ज की गई।